हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 14। बहुत इंटरेस्टिंग है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भगवान कौन कौन से कर्य करते हैं। जैसे भगवान ने अभी बताया यहाँ पे कि चार वर्णों की सृष्टि वो करते हैं, जिसके द्वारा जीवात्माओं की बद्धात्माओं की धीरे धीरे शुद्धिकरण हो। तो सृष्टि करते हैं तो वो सृष्टि करके बंधते नहीं। जैसे हम इस जगत में किसी वस्तु की या व्यवस्था की सृष्टि करते हैं तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, और जब वो नष्ट हो जाती है हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड, हमारे नियंत्रण के बाहर, तो हमें दुख होता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। भगवान इस प्रकार से पूर्व से आसक्त नहीं होते हैं किसी भी तरह से। इस जगत में सृष्टि हो रही है और वो सृष्टि हो रही है जीवात्माओं की इच्छा के लिए। जिस प्रकार से जमीन में बहुत सारे बीज होते हैं और जब वर्षा होती है तो अपने जीव जो बीज है उसके अनुसार अलग अलग अंकुर आते हैं, तो इसमें वर्षा का दोष नहीं है। और वर्षा वर्षा किसी भी बीज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, होता है कि कौन सा बीज से कौन सा पेड़ निकलेगा, लेकिन वर्षा के बिना बीज उग नहीं सकता है। उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं ताकि जो हमारी वासनाएं पूर्व सृष्टि से आ रही हैं सभी जीवात्माओं की, उनकी पूर्ति करने का एक अवसर हम सबको मिल सके। लेकिन इन सबको कार्य को करने में भगवान किसी भी तरह से आसक्त नहीं होते, तो ये व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के स्रष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, समझ में आना चाहिए। इस जगत में प्रायः हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका उसका प्रेरणा का कारण ये होता है कि व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति चाहता है, या वो कुछ अभाव का अनुभव कर रहा है उसके कारण से वो चाहता है, उसे कुछ वस्तु नहीं प्राप्त है। भगवान की स्थिति इस प्रकार से नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान को प्राप्त ना हो। वो पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हैं, फिर भी जीवात्माओं की भौतिक इच्छा को संतुष्ट करने के लिए या भौतिक इच्छा को पूर्ण करने की सुविधा देने के लिए भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझ में आना चाहिए कि हम लोग कोई कार्य करते हैं तो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर करते हैं, और भगवान जिस जो कार्य करते हैं तो उसमें इनका खुद का कोई प्रयोजन नहीं होता। जीवात्माओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस जगत की सृष्टि को करते हैं। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। इंद्रिय तृप्ति के कार्य को अगर भगवान निर्दिष्ट करते करने के लिए कहते तो भगवान भगवद गीता में क्यों बोलते यही संस्पर्शजा भोगा दुखा योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जो भोग हैं, इंद्रिय भोग हैं, यही जीवात्मा के दुख दुख का कारण है, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसमें रमण नहीं करते हैं। तो भगवान इस प्रकार की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान एक व्यवस्था जरूर कर रहे हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा, जिसके द्वारा हम अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को कर सकते हैं। तो ये अंतर समझ में आना चाहिए। भगवान की इच्छा नहीं है कि हम भोग करें या पाप करें, भगवान लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा भगवान एक व्यवस्था करते हैं कि यदि हम कुछ भोग का कार्य करना चाहते हैं तो उसको संतुष्ट किया जा सके। क्योंकि जीवात्मा किस प्रकार की इच्छा है, और इसका भी एक बहुत गहरा कारण है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं लेकिन, और वह सर्वशक्तिमान भी हैं, लेकिन वो जबरदस्ती हमसे प्रेम करवाना नहीं चाहते हैं। हमारा एक प्रेम में संबंध है भगवान से जो हम भूल गए हैं, तो उसको केवल जागृत मात्र करना है। तो जागृत करने के लिए दायित्व हमको लेना पड़ेगा, भगवान जबरदस्ती नहीं करते। और भगवान ये भौतिक प्रकृति के द्वारा व्यवस्था करते हैं कि देखो आप भोग करना चाहते हो तो मैं भोग की व्यवस्था दे रहा हूँ, लेकिन भोग करके क्या सुख मिला आपको? तो जिस प्रकार से कई कई जन्मों में हम भोग करते करते असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, तो एक संभावना होती है कि जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ेगा और वो सोचेगा कि मैं इस जगत पे सुखी नहीं हूँ भोग करके। तो ये सिखाने के लिए कि जीवात्मा स्वयं इस कार्य को सीख ले करके भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और इस चीज को प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति, यानी कि इस जगत में भी आप देखिए कि लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं ताकि आहार निद्रा भय मैथुन के जो सुख है उसको और अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन एक अमेजिंग बात यह है, आश्चर्यजनक बात यह है कि जो सुख मिलता है आहार निद्रा भय मैथुन से, उसकी कोई खास प्रगति नहीं होती है। लेकिन हाँ, उसकी थोड़ी सी पॉलिशिंग हो जाती है कि भाई एक घर में खाना खा रहा था तो 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, ऐसे करके बढ़ जाता है, लेकिन खाने का सुख वही रहता है। उसी प्रकार से इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, उसके बाद और ऊपर के लोकों में जाना चाहता है, लेकिन उद्देश्य जो है वो इंद्रिय तृप्ति ही रहता है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। एक मिनट थोड़ा समझिएगा, स्वयं में पूर्ण होने का अर्थ ये है कि भगवान स्वयं में पूर्ण होने का अर्थ ये है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के संपर्क में रहते हैं। भगवान अंतरंग शक्ति में रहते हैं, अपने शुद्ध भक्तों से वहां पे आदान प्रदान करते हैं और उनको इस जगत के किसी भी भौतिक विनिमय से, भौतिक आदान प्रदान में कोई रुचि नहीं होती है। इसलिए भगवान को कोई आकर्षण नहीं होता स्वर्ग सुख इत्यादि का। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, यह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाले वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, निमित्त मात्र में वासौ सज्जानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सज्ज शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। यानी कि ये थोड़ा समझना चाहिए, जैसे प्रभुपाद तो अच्छा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे वर्षा होती है तो वर्षा की वजह से बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं, क्षमा कीजिएगा, बीजों में अंकुरित उत्पन्न होते हैं। तो बिना वर्षा के बीजों में अंकुरित उत्पन्न नहीं हो सकते, लेकिन वर्षा एक पर्टिकुलर टाइप के बीज के अंकुर के लिए दायित्व, उसका दायित्व नहीं है। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा इस बात को। जो बीज में अंकुर है वो अंकुर आने की शक्ति उस बीज में पहले से ही थी, लेकिन जब वर्षा होती है तो फिर बीज से वो अंकुर आता है। तो हम सभी जीवात्माएं बहुत अनादिकाल के भौतिक संस्कारों की वजह से, भौतिक वासनाओं से ग्रसित हैं। तो जो भौतिक वासनाएं हैं उनको एक भौतिक फैसिलिटी दी जाती है, सुविधा दी जाती है जिसके द्वारा उस वासना को पूर्ण करने की सुविधा मिले। तो इसकी व्यवस्था भगवान भौतिक प्रकृति के द्वारा करते हैं, और भौतिक प्रकृति अपने से नहीं क्रियान्वित होती है, वो भगवान की शक्ति से क्रियान्वित होती है। इसलिए ये सोचना कि केवल भौतिक प्रकृति सब कुछ कर रही है, ये गलत धारणा है, भगवान इसके कारण है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि भगवान हमको पाप करवा रहे हैं या पुण्य करवा रहे हैं। वस्तुतः प्राय जो जीवात्माएं हैं जो उनके पहले के जीवन के संस्कार हैं उन संस्कारों के कारण वो आगे वो कार्य करने लगती हैं। कोई व्यक्ति पुण्यात्मा रहता है पहले से तो वो शास्त्रों को ज़्यादा जाने भी नहीं तो भी वो पुण्यात्मा रहता है, दूसरों का कल्याण करता रहता है। जो पापात्मा होता है प्राय वो भी ऐसे करता रहता है। अब आप कहेंगे तो जीव की मुक्ति होगी कैसे? तो जीव की मुक्ति होती है जब उसे भगवान के भक्तों का संग मिलता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान के उपदेशों को सुनता है शास्त्र से, भगवत कृपा से, और उसकी किसी तरह से अज्ञात सुकृति इकट्ठी रहती है जिसके द्वारा उसको भगवान की बातों पर विश्वास होता है, श्रद्धा जिसे कहते हैं, और फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर के जो भजन करता है भगवान का, तब उसका जो भौतिक संसर्ग है वो नष्ट होता है। नहीं तो प्रायः हम अपने पूर्वगत किए गए शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। और इसीलिए हम सब लोगों के लिए शास्त्रों को सुनना बहुत आवश्यक है। हरि नाम जप के साथ साथ हमें शास्त्र सुनना चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे लिए कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, न कि अपनी पूर्वगत कार्यों के द्वारा की गई वासनाओं के अनुसार हम कार्य करते रहे। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, इसको आगे भगवान इस बारे में चर्चा करेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहार्हसि। कि शास्त्र का विधान समझ करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसे कौन से कार्य करने हैं कौन से नहीं करने, और साथ ही साथ वो शास्त्र भी दिव्य शास्त्र होने चाहिए, जैसे कि भगवद गीता तमोगुणी शास्त्र के भी व्यक्ति या वो शास्त्र जो तमोगुणी लोगों के लिए है उसका पालन करके भी प्रगति होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होती है। तो भगवत गीता का पालन व्यक्ति करता है तो उसकी प्रगति बहुत तीव्र होती है। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नये गृणे न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप समान व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं वे निश्चित रूप से कर्मफलों में बंध जाते हैं, किंतु जो परम सत्य को जानता है वे कृष्ण भावना में स्थिर मुक्त जीव हैं। कुछ चीज़ समझ में आनी चाहिए। एक, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव को समझेगा कि किस प्रकार से भगवान कर्मफलों से मुक्त हैं तो वो भगवान की दिव्य सेवा में लगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भगवान की दिव्यता को समझने से हम कैसे कर्मफलों से मुक्त हो जाएंगे। कर्म फल में बनने का कारण यही है कि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, मेरा क्या फायदा होगा इससे, तब हम कार्य करते हैं। अगर फायदा नहीं होगा भौतिक रूप से तो नहीं करते। तो जब व्यक्ति समझता है कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कर्म फल से मुक्त हैं, कर्म फल के मंदिर में नहीं हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान हैं, तो फिर स्वभावतः नेचुरली हम उनकी सेवा करना चाहेंगे। तो जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो ये सकाम कर्मों की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। बल्कि अद्भुत बात ये है कि सकाम कर्म की प्रवृत्ति जो है वो हमें भगवान की सेवा में लगानी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाना चाहता है तो भगवान के लिए गा सकता है, कोई खाना चाहता है भगवान के लिए खा सकता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकता है, यश यश प्राप्त करना चाहता है तो भगवान के लिए कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जैसे यश मिले, लेकिन वो क्रिया क्योंकि भगवान को समर्पित हो जाती है तो फिर वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बस खाली ये समझने मात्र। तो आप कहेंगे इसमें डिफिकल्टी क्या है, ये तो बहुत आसान लगता है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा तब होती है जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, साधना करता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम और साथ साथ भक्तों से सुनता है। तो हम जब नाम जप करते हैं, साधना करते हैं और भगवान के संग भगवान के बारे में प्रामाणिक स्रोतों से सुनते हैं, तब इस प्रकार का विश्वास हमारे हृदय में उदित होता है, और ये दिव्य श्रद्धा है। इस भगवान के संबंधित कुछ भी हो, चाहे वो भगवान का भोग हो, प्रसाद हो, रूप हो, नाम हो, भगवान कुछ भी है और श्रद्धा भी हो तो सब दिव्य कहलाती है, भौतिक प्रकृति के परे। तो इस प्रकार की श्रद्धा भक्तों के संग से आती है, इसीलिए हमें भगवद्गीता नियमित रूप से सुनना चाहिए ताकि इस प्रकार की श्रद्धा रहे कि भगवान दिव्य हैं और मैं उनकी सेवा करूँगा तो मैं भी इस कर्मबंधन से आराम से मुक्त हो जाता हूँ। हरे कृष्णा।